आर्यांश दीवा के साथ अपने बेडरूम में था। वो चाहता था कि दीवा अपनी जॉब छोड़ दे, लेकिन दीवा ने कहा कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती है। बातों ही बातों में आर्यांश ने दीवा से उसकी हॉबी के बारे में पूछा। हालांकि वो पहले ही जानता था कि दीवा को पियानो बजाना पसंद है, लेकिन दीवा ने काफ़ी श्योरिटी से ना में जवाब दिया, जो आर्यांश को हैरान कर रहा था। आर्यांश इस बात को आसानी से जाने नहीं दे सकता था। उसने दीवा की आंखों में देखा और उन्हें पढ़ने की कोशिश की। दीवा की आंखों में मायूसी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आर्यांश ने उसके मना करने के बाद भी आगे पूछा, मैंने तुम्हें उस दिन क्लब में देखा था और तुम पियानो बजा रही थी, तुम बहुत अच्छा बजाती हो। आर्यांश का जवाब सुनकर दीवा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, मानो वो अपने जख्मों को आंखों में उतरने नहीं देना चाहती हो। दीवा ने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, मुझे पियानो बजाना पसंद नहीं है, बस उस दिन मजबूरी थी तो जाना पड़ा। अच्छा, तो तुम्हें पियानो बजाना पसंद नहीं और तुम मजबूरी में वहां गई थी। तुमने 5 साल पहले एक कॉम्पिटिशन जीता था, गोल्ड प्राइज ऐसे ही नहीं मिलता है मिस कोइंग का। उस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए मेहनत लगती है और म्यूजिक के लिए अपना प्यार, आर्यांश ने सख्त आवाज में कहा। दीवा ने आर्यांश की तरफ तीखी निगाहों से देखा, वो उसके बारे में सब कुछ जानता था। हाँ, दीवा ने वो कॉम्पिटिशन जीता था और उसे म्यूजिक से प्यार भी था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो मेडिकल फील्ड में अपना ध्यान फोकस करने लगी। दीवा के लिए भी ये आसान नहीं था। कॉम्पिटिशन जीतने के बाद जो विनर होता है उसको काफ़ी कुछ मिलता है, इंटरव्यू, नेम, फेम, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कॉम्पिटिशन को जीतने वाला विनर गुमनामी में खो गया था। दीवा के मन और शरीर पर कुछ गहरे जख्म थे जो वो किसी को दिखाना तक नहीं चाहती थी, और आर्यांश उसकी मर्जी के बिना उन्हें छू रहा था। कई बार कुछ चीज़ें कोइंसिडेंटली मिल जाती हैं और वो बस एक कोइंसिडेंस था, दीवा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि ये सब कहते हुए उसकी पलकें भीगी रही थी। दीवा कुछ बताना नहीं चाहती थी तो आर्यांश ने भी फोर्स नहीं किया, वैसे भी वो पहले ही उसके बारे में सब कुछ पता लगा चुका था। आर्यांश दीवा के पास से उठा और बोला, तुम नीचे चलकर खाना खाना चाहोगी? दीवा ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, उसे भूख लगी थी और ऊपर से कमजोरी भी महसूस हो रही थी। दीवा ने जवाब में बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। आर्यांश ने तुरंत सुमन को मैसेज करके अगले 5 मिनट में खाना डाइनिंग टेबल पर रखने को कह दिया। खाना पहले से ही तैयार था, लेकिन दीवा की तबीयत खराब होने के चक्कर में आर्यांश ने भी कुछ नहीं खाया था। फिर आर्यांश ने दीवा का हाथ पकड़ा और उसे संभालते हुए नीचे लेकर पहुंचा। डाइनिंग टेबल पर पहले से ही एक शानदार खाना तैयार करके रखा हुआ था। सुमन माँ, आप आराम कीजिए, मैं देख लूँगा, आर्यांश बोला। वो नहीं चाहता था कि सुमन की मौजूदगी में दीवा थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल महसूस करे। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही दीवा ने आर्यांश को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी तो बिना आर्यांश का वेट किए अपनी प्लेट में सर्व करके जल्दी जल्दी खाने लगी। दीवा ऐसे खा रही थी जैसे उसे जन्मों से खाना ना मिला हो। आर्यांश उसे अजीब नजरों से देख रहा था। काफी देर तक वो चुप रहा, लेकिन बाद में उसे दीवा को टोकना ही पड़ा। धीरे खाओ, ये कहीं भागने वाला नहीं है, मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी खाती हूँ, हॉस्पिटल में भी ज़्यादा ब्रेक नहीं मिलता है, दीवा ने बेपरवाही से कहा और बिना आर्यांश की परवाह किए फिर से खाने लगी। आर्यांश जो काफ़ी एटिकेट से रहता था और हर एक मैनर्स को फॉलो करता था, उसे दीवा को इस तरह देखकर काफ़ी अजीब लग रहा था। तुम्हें अपनी इमेज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, आर्यांश बोला। मुझे इमेज बनाकर क्या करना है? कौन सा तुम मुझे लेकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाओगे और तुम्हें मेरी वजह से एम्बैरेसमेंट होगी, दीवा ने सर हिलाकर कहा। मिलवा देता, लेकिन मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, आर्यांश ने जवाब दिया। आर्यांश की बात सुनकर दीवा के हाथ खाते हुए रुक पाए। उसने आंखें बड़ी की और कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम्हारा नेचर फ्रेंड बनाने जैसा है नहीं, आर्यांश ने सार्कास्टिकली कहा। उसके ताना मारने पर भी दीवा पर कोई असर नहीं हुआ, वो इस बेपरवाही से खा रही थी। फिर उसने आर्यांश की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, जब फ्यूचर में हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट या रिश्ता नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे। नहीं, मुझे ऐसी क्लमजी फ्रेंड नहीं चाहिए, आर्यांश ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और फिर बेसिक मैनर्स को फॉलो करते हुए खाना खाने लगा। आज पहली बार दीवा और आर्यांश ने एक दूसरे से नॉर्मली बात की थी, दीवा को अच्छा लग रहा था। खाना हो जाने के बाद आर्यांश अपने कुछ कामों में लग गया तो वहीं दीवा टीवी देख रही थी। रात के लगभग 9 बजे के करीब आर्यांश दीवा के पास आया और अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी इस हरकत पर दीवा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। दीवा मन ही मन बड़बड़ाकर कह रही थी, हद है यार, मुझे लगा था आज मैं बीमार हूँ तो ये मुझे छोड़ देगा, क्या इसे मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है। आर्यांश ने अचानक से दीवा को खुद के करीब किया और उसके कान के पास आकर हस्की वॉइस में कहा, अच्छा, आज रात तुम मुझे नहलाओगी या मैं तुम्हें? दीवा ने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर हैरानी से बड़ी की। उसे लगा आर्यांश मजाक कर रहा है। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो ना? आर्यांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास 5 सेकंड का टाइम है और 2 ऑप्शन, दोनों में से एक सिलेक्ट करना होगा। लेकिन मैं खुद नहा सकती हूँ, दीवा ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। ठीक है, तुम खुद नहा लेना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ नहाना होगा, आर्यांश ने कहा। तुम बेशर्म इंसान हो, मुझे ऐसा सोचकर ही अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, दीवा ने गिड़गिड़ा कर कहा। पर आर्यांश उसकी कहां सुनने वाला था। ऐसा नहीं था कि आर्यांश और दीवा के बीच में कोई पर्दा रहा था, लेकिन जब भी उनके बीच रिश्ता बनता तब अक्सर दीवा की आंखें बंद ही रहती थी। आर्यांश उसे जबरदस्ती बाथरूम के अंदर लेकर गया। वो कुछ कहती उससे पहले ही आर्यांश ने उसे कपड़ों सहित बाथटब में डाल दिया था। तुम सच में पागल हो, दीवा ने उसे देखकर चिढ़कर कहा। क्या कर सकते हैं वाइफी, तुम्हें मुझे झेलना ही होगा, आर्यांश ने कंधे उचकाकर कहा। मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, दीवा बोली। अच्छा, तो तुम्हें गुस्सा आता है जब मैं तुम्हें अपनी वाइफ कहकर बुलाता हूँ। अब तो मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा और तुम इसी तरह चिढ़ती रहना, आर्यांश ने दीवा को छेड़ते हुए कहा। उसे दीवा को तंग करना बहुत अच्छा लगता था। इससे पहले कि दीवा कुछ कहती, आर्यांश बाथटब के अंदर आ गया था। उसने दीवा की नाइट ड्रेस निकाल दी थी। दीवा ने खुद को कवर करने के लिए अपने हाथ आगे की तरफ कर लिए थे। आर्यांश फिर से दीवा को कुछ परेशान करने के लिए कुछ कहता कि तभी उसकी नजर दीवा के लेफ्ट साइड चेस्ट के नीचे बने बड़े से निशान की तरफ गई, जो दिखने में काफी बदसूरत नजर आता था। उसे देखते ही आर्यांश के चेहरे के भाव गहरे हो गए थे। आर्यांश की आंखों में गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। उसने दीवा की तरफ देखकर मायूस आवाज में पूछा, ये निशान कैसे आया? अचानक दीवा की आंखें नम होने लगी। उसने अपनी आंखों के कोने को साफ किया और जवाब में कहा, देख नहीं रहा, सर्जरी का निशान है। और तुम क्यों पूछ रहे हो, कौन सा तुमने ये पहली बार देखा है? दीवा की आंखों में भी दर्द उतर आया था। आर्यांश आगे कुछ भी पूछकर उसके जख्मों को हरा नहीं करना चाहता था, और ना ही वो दीवा को परेशान करने के मूड में था। उसका मन किया कि वो दीवा को अपने सीने से लगा ले, ताकि वो अपने सारे दर्द को भूल जाए। आर्यांश ने गहरी सांस ली और दीवा की आंखों में देखते हुए इंटेंसिटी से कहा, दीवा, आगे से मैं तुम्हें कभी कोई चोट नहीं लगने दूंगा।
आर्यांश की आवाज में एक वादा था, जिसे सुनकर दीवा भी एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने इतने दिनों में पहली बार शायद प्यार से उसको उसके नाम से बुलाया होगा, वरना तो वो उसे काफी फॉर्मली मिस गोइंका ही चहता था, या कभी गुस्से में उसका पूरा नाम लेकर बुलाता था। जब आर्यांश ने दीवा से वादा किया, तो एक पल के लिए दीवा के दिल में यही ख्याल आया कि काश उनका रिश्ता अच्छा होता तो शायद आज वो उसे बहुत प्यार करता। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या दीवा और आर्यांश का रिश्ता सुधरेगा, या फिर ऐसे ही ये कॉन्ट्रैक्टेड लव चलता रहेगा? चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं।